आज के मुख्य समाचार ऋषारी जैन के साथ। पूर्ण टीका पा चुके ऑस्ट्रेलियाई अब बिना संगरोध लौट सकेंगे घर। कोरोना के बाद धीरे धीरे सुधर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। और एश बार्टी जीतेंगी रिकॉर्ड 4th न्यूकॉम मेडल। और अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिक्लियन भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठी स्वतंत्र समिति ICAC के सामने दूसरी बार पूछताछ के लिए पेश हो रही हैं। इस जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि सुश्री बेरेजिक्लियन ने 2015 से 2018 के बीच श्री डैरिल मैग्वायर के सुझाए प्रोजेक्ट्स में सहयोग देकर सार्वजनिक विश्वास का हनन किया या नहीं। सुश्री बेरेजिक्लियन ने समिति को बताया है कि उनकी भावनाओं ने उन्हें श्री मैग्वायर के भ्रष्ट आचरण को समिति के सामने रखने से नहीं रोका है। कमीशन के सहायक काउंसल स्कॉट रॉबर्टसन के ये पूछने पर कि क्या उन्होंने श्री मैग्वायर के भ्रष्ट आचरण की शिकायत इसलिए नहीं दर्ज की क्योंकि वे उनकी परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहती थी, श्री बेरेजिक्लियन इस बात पर अडिग रही कि ऐसा नहीं है।
No, because I sacked him. It was based on the fact that I didn't feel I knew anything.
You're aware of at least some information regarding Mr. Maguire's outside business dealings.
That doesn't mean you suspect corruption. That doesn't mean you suspect wrongdoing. Just because you have scant bits of information doesn't mean you suspect corruption. And if I had suspected corruption, if I had suspected wrongdoing, of course I would have reported those matters.
विक्टोरिया में आज 1,471 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले और 4 मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में इस समय करीब 22,000 सक्रिय कोरोना मामले हैं। संगरोध मुक्ति यात्रा सुचारू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े हवाई अड्डों पर कई परिवार महीनों बाद फिर एक हो रहे हैं। पूर्ण टीका पा चुके ऑस्ट्रेलियाई अब सीधे अपने घरों को लौट सकेंगे। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बंद होने के बाद अब विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स अपने पहले संगरोध मुक्त अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं।
Pretty awesome to be home.
Yeah.
I've been in the UK for about 5 weeks. Yeah. I went home because my mum passed away, so went back to see family.
So this was an impossible flight to get on and I'm so relieved to be on it and yeah, it was just quite emotional flying down and seeing the lights as we were landing. So yeah, I'm quite happy.
Oh, brilliant to get back. I'm so happy that I don't have to quarantine. It's amazing.
New South Wales Nationals के उपनेता Stuart Ayres सिडनी के Kingsford Smith Airport पर आने वाले यात्रियों का स्वागत करते नजर आए।
Well, today Sydney has reopened Australia to the world and Sydney has reopened the country to each other. We're also allowing people to move freely around regional New South Wales if they're fully vaccinated. Today, our infection rate is now down at 135, which is an incredibly strong result.
New South Wales के स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि राज्य में आज 4 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं। उधर न्यू साउथ वेल्स के क्षेत्रीय इलाकों में आज से यात्रा और व्यापार पर से प्रतिबंध खुल गए हैं। करीब 3 महीने बाद अब सिडनी निवासी क्षेत्रीय और ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर सकेंगे। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने सिडनी से डब्बो यात्रा कर क्षेत्रीय पर्यटन और राज्य के टीकाकरण अभियान को बढ़ावा दिया।
Looking forward to the zoo. I love Dubbo Zoo, the best zoo in the world. It's going to be great to meet many people and speak to the business owners as well who have been doing it tough. But there's a long way to go. This journey is far from over. We need to maintain our focus. Our booster shots are available today as well. It's another important announcement. They'll be available across the state in regional New South Wales at GPs and pharmacies. And that's incredibly important as we enter this next phase.
कैनबरा के विकलांग सहायक कर्मचारी और कम्युनिटी एज्ड केयर कर्मचारियों के लिए अब टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नए सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेश के अनुसार राजधानी में काम कर रहे इन लोगों को 15 नवंबर तक टीके की पहली खुराक और 13 दिसंबर तक पूर्ण टीका पाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की स्वास्थ्य मंत्री रेचल स्टीफन स्मिथ का कहना है कि यह फैसला उद्योग सदस्यों की सहमति से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कर्मचारियों के सुपर एनुएशन फंड अब अपने आप ही उनके नए काम क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएंगे। फेडरल सरकार की सुपर एनुएशन नीति में बदलाव के बाद इस फैसले को सोमवार से लागू किया जाएगा। कर्मचारी स्टेपलिंग प्रक्रिया के तहत सुपर एनुएशन फंड अपने नए काम की जगह पर ले जा सकेंगे और चाहें तो नया फंड भी चुन सकेंगे। सुपर एनुएशन मंत्री जेन ह्यूम का कहना है कि ये फैसला एक व्यक्ति के कई सुपर अकाउंट होने की स्थिति को बदलने के लिए लिया गया है। फेडरल सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था दो सबसे सघन राज्यों के खुलने के बाद वापस पटरी पर आने लगेगी। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग का कहना है कि आने वाले महीनों में देश में कोरोना प्रतिबंध खुलने के साथ साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी तेजी पकड़ने लगेगी। उनका ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को दूसरी कोरोना संबंधी मंदी नहीं झेलनी पड़ेगी।
Australians are able to travel more freely within their country. Ticket sales are up and Australians can look to a very bright summer.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन COP26 जलवायु शिखर वार्ता के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। रोम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने श्री मॉरिसन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने $90 बिलियन की सबमरीन अनुबंध में फ्रांस से छूट बोला था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह चौंकाने वाला व्यक्तिगत आक्षेप तब किया जब SBS वर्ल्ड न्यूज और ABC G20 शिखर वार्ता के दौरान उनसे बात करने पहुंचे।
Your country was shoulder to shoulder with us during the wars. You had fighters with us when our freedom was at stake. We do have the same value. So I think we have to honor this common past and these common values. But I think you can have disagreements. I do respect sovereign choices. But you have to respect allies and partners. And it was not the case with this deal.
इसके बाद ही साथ यात्रा कर रहे मीडिया ने श्री मॉरिसन पर इस व्यक्तिगत हमले का जवाब देने का दबाव डाला। श्री मॉरिसन ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।
No.
He also accused you. He says he doesn't think you lied to him. He knows you lied to him.
I don't agree with that.
He knows you lied to him.
Well, it's not true. We had dinner together, as I've said, on numerous occasions. I explained very clearly that the conventional submarine option was not going to meet Australia's interests.
उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जॉन साकी ने बताया है कि उन्हें COVID-19 हो गया है। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आखिरी बार मंगलवार को संपर्क में आई थीं। सुश्री साकी का कहना है कि उस मुलाकात के दौरान वे दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे और मास्क भी पहने हुए थे। उन्होंने इसी के साथ अपनी यूरोप यात्रा को भी रद्द कर दिया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की परिचर्चा का केंद्र अब ग्लासगो है। संयुक्त राष्ट्र की COP26 शिखर वार्ता पिछली रात आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई। वैश्विक नेता आज स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर में एकत्रित होंगे। इस वार्ता में करीब 200 देश मिलकर इस विषय पर कूटनीतिक बातचीत करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की सांझी समस्या को कैसे संभालना है। COP26 शिखर वार्ता के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने सम्मेलन की शुरुआत एक उम्मीद भरे संदेश से की।
World leaders collectively over time have failed to deliver. Yes, we've made progress. Yes, we are bending the curve towards 2 degrees, but we need to go faster.
और अब खबरें भारत से। भारत समेत दुनिया भर के 190 से अधिक देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। दुनिया में अब तक 24 करोड़ 63 लाख से अधिक लोग COVID-19 की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 49 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में मामले अब घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,00,000 से अधिक हो चुकी है। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। रविवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 12,830 नए मामले भारत में दर्ज किए गए थे। इस एक दिन में 14,666 मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे संक्रमण से मुक्ति मिल रही है और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी पकड़ रही है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 2 वर्ष में पेट्रोलियम क्षेत्र में जो निवेश होना था वो नहीं हुआ है, जिससे कच्चे तेल के दामों में बड़ा उछाल आया है और इसी वजह से देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी शनिवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.29 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 75 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। विश्व नंबर 1 एश बार्टी ऐतिहासिक 4थी बार न्यूकोम मेडल विजेता बन गई हैं। न्यूकोम मेडल हर साल ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ियों की अति विशेष उपलब्धियों को सराहता है। सोमवार को टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की कि 2021 में यह प्रतिष्ठित सम्मान फिर लौट रहा है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते यह सम्मान रद्द कर दिया गया था, फिर भी 17 दिसंबर को होने वाला सम्मान समारोह ऑनलाइन ही किया जाएगा। इस खेल सत्र में एश बार्टी ने विंबलडन के अलावा 4 और टाइटल जीते हैं। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल दिन ढलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल तेज धूप छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल अधिकांश रूप से धूप छाई रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल धूप ही धूप है। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना है। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां तापमान 25 डिग्री अधिकतम जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में तेज बारिश के साथ तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप बने रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।